नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर बात करेंगे और खास तौर पर इसके एक विशेष अध्याय पर जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण। इसमें गुरुदेव ने जीवन के आखिरी हिस्से में बड़े संकल्प लेने की बात की है, तो चलिए इसी पर आज जरा गहराई से बात करते हैं।
जी बिल्कुल। और ये अध्याय सिर्फ ये नहीं बताता कि बाद के जीवन में क्या करें, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे बड़ी चुनौतियां ही, मतलब कठिन परीक्षाएं ही, व्यक्ति और समाज की असली ताकत को बाहर लाती हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के उदाहरण भी दिए हैं कि ईश्वर भी जिनसे स्नेह करते हैं उन्हें मुश्किलों से गुजार कर और बेहतर बनाते हैं।
हाँ, ये बात तो है। और फिर वो अपने जीवन के 75वें वर्ष का जिक्र करते हैं जब उन्हें एक दिव्य संकेत मिला, पांच बड़े लक्ष्य साधने का, है ना?
जी हाँ बिल्कुल। ये पांच लक्ष्य एक तरह से उनके जीवन के काम की पूर्णाहुति थे और एक नए युग की शुरुआत का संकल्प भी। उन्होंने इन्हें पांच हव्य कहा, मतलब यज्ञ की पांच पवित्र आहुतियों जैसे।
अच्छा।
पहला था 1,00,000 गायत्री यज्ञ।
1,00,000?
1,00,000 यज्ञ।
ये कैसे संभव हो सकता था, मतलब इतने बड़े स्केल पर?
हाँ, सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन योजना सेंट्रलाइज नहीं थी, वे केंद्रित थी। मतलब हर वरिष्ठ अनुयायी जिन्हें पूज्य गुरुदेव प्रज्ञापुत्र कहते थे, वो अपने जन्मदिन पर घर पर ही एक छोटा यज्ञ करे, बस 108 आहुति वाला।
अच्छा, घर पर ही?
जी। और साथ में समय दान, अंशदान का संकल्प ले, कोई एक बुराई छोड़े, एक अच्छाई अपनाए, और एक ज्ञान यज्ञ, मतलब कोई विचार गोष्ठी भी हो। तो इस तरह लाखों घरों तक यज्ञ का सकारात्मक प्रभाव फैलता, वायुमंडल और लोगों की सोच दोनों सुधरते।
ये तो कमाल का आइडिया है, शक्ति को इस तरह बांट देना। अच्छा, और दूसरा लक्ष्य?
वो था 1,00,000 युग सृजताओं को उभारना और प्रशिक्षित करना। फिर से 1,00,000? हाँ, 1,00,000 लोग। इसका उद्देश्य था शांति कुंज में 1,00,000 लोगों को संजीवनी विद्या सिखाना।
संजीवनी विद्या मतलब
जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, परिवार में अच्छे संस्कार कैसे आए, समाज में अच्छी सोच कैसे बढ़े, इसका प्रशिक्षण। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल निशुल्क थी, रहना खाना सब मुफ्त, ताकि ये लोग फिर अपने अपने क्षेत्र में जाकर समाज को सही दिशा दे सकें, लीडरशिप कर सकें।
अच्छा, निशुल्क प्रशिक्षण, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तीसरा लक्ष्य था प्रकृति से जुड़ा हुआ 1,00,000 अशोक वृक्षों का रोपण।
अशोक वृक्ष ही क्यों, इसमें कुछ खास?
जी, अशोक वृक्ष के पूज्य गुरुदेव ने कई कारण बताए। एक तो इसका धार्मिक महत्व है, जैसे सीता जी अशोक वाटिका में रही थी।
दूसरा, इसके औषधीय गुण बहुत हैं, खासकर स्त्रियों के रोगों के लिए और पुरुषों के लिए भी बलवर्धक हैं। और हाँ, पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। तो वृक्षारोपण को भी वो एक यज्ञ की तरह ही मानते थे, एक ऐसा पुण्य काम जिसका फल पीढ़ियों तक मिले।
सही बात है। अच्छा, चौथा लक्ष्य तो और भी बड़ा लगता है, 1,00,000 ग्राम तीर्थों की स्थापना। गांव तीर्थ कैसे बन सकते हैं, ये थोड़ा समझाएंगी?
देखिए, यहाँ तीर्थ का मतलब पूजा की जगह से नहीं है, यहाँ मतलब है प्रेरणा स्थल।
प्रेरणा स्थल?
अच्छा।
हाँ।
योजना थी कि गांव को पिछड़ेपन से, मतलब अशिक्षा, गंदगी, बुरी आदतों से बाहर निकालकर अच्छाई और तरक्की का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए साइकिल पर टोलियां गांव में जाएं, वहां शिक्षा, सफाई, नशा मुक्ति, स्वावलंबन, सहयोग, इन अच्छी बातों को जगाएं और फिर वहां लोकल कमेटियां बनाएं जो ये काम आगे बढ़ाएं। असल में गांव को ही देवता मानकर उसे बेहतर बनाना ही तीर्थ बनाना था।
समझ गया, बहुत गहरा विचार है। और पांचवा, 1,00,000 वर्ष का समय दान संचय, ये कैसे संभव है, 1,00,000 साल का समय?
हाँ, ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना?
बिल्कुल।
पर पूज्य गुरुदेव का मानना था कि युग बदलने जैसे बड़े कामों के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों का समय और उनकी मेहनत। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि यह संभव है अगर कुछ हजार लोग रोज कुछ घंटे दें समाज के लिए, तो ये लक्ष्य पूरा हो सकता है।
अच्छा,
कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई 20 साल की उम्र से 70 साल तक, मतलब 50 साल, रोज सिर्फ 2 घंटे समाज सेवा करे, तो वो अकेला ही करीब 14 साल का समय दान कर देता है। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग 7,172 लोग मिलकर ये 1,00,000 साल का समय दान पूरा कर सकते हैं। ये पुरुष और स्त्री सभी के लिए एक आह्वान था कि अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए समय दें, जैसे आजकल क्राउड सोर्सिंग होती है, कुछ वैसा ही।
हाँ, समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ 5 काम नहीं थे, इनके पीछे एक पूरी सोच थी, एक दर्शन था।
नहीं, संगठित होकर मिलकर प्रयास करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और ईश्वर पर विश्वास रखना होता है। गुरुदेव का संदेश यही था कि मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, और जैसे बीज गलकर पेड़ बनता है, या जैसे आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों को बाद में सम्मान मिला, वैसे ही ऐसे अच्छे कामों में जुड़ना खुद के लिए भी बहुत कल्याणकारी होता है। इसमें खोने से ज्यादा पाना है।
वाकई ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन का जो बात का हिस्सा है उसे सिर्फ आराम करने के बजाय कितने सार्थक कामों में लगाया जा सकता है।
जी, और आज के समय में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि हम अपनी निजी जिम्मेदारियों और समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनमें संतुलन कैसे बनाएं।
सही कहा। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, क्या हम भी पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में अपनी क्षमता के अनुसार किसी बड़े सामूहिक हित के लिए थोड़ा सा ही सही अपना समय, अपनी मेहनत या संसाधन देने का एक पक्का इरादा कर सकते हैं।